જયપુરમાં તારીખ 15/8/87 પૂજ્ય ભાઈશ્રીની તત્વ ચર્ચા.
તો સબ એક મેક એક રૂપ હો જાતા અભેદ અપેક્ષા સે. ભેદ અપેક્ષા સે દેખો તો ઉસમે અતદ્ભાવ હૈ. શ્રદ્ધા ગુણ ઓર જ્ઞાન ગુણ એક નહીં હો જાતા હૈ. શ્રદ્ધા ગુણ મે જ્ઞાન ગુણ કા અભાવ હૈ ઓર જ્ઞાન ગુણ મે શ્રદ્ધા ગુણ કા અભાવ હૈ. इसलिए सब सबकी परिणति भी भिन्न भिन्न है. रूप का अर्थ सब मिलकर एक गुण होता है. श्रद्धा गुण ज्ञान गुण हो गई और ज्ञान गुण श्रद्धा गुण हो गया ऐसा होता नहीं. सबका लक्षण भिन्न भिन्न रहता है मगर एक में दूसरा का रूप है. उसका अर्थ ये सब अभी नहीं से देखो तो एक रूप ही है आत्मा ही है बस. इतना ही
मोक्षवान प्रकाश के सातवें अधिकार के शुरुआत में बताया है कि सर्व में इसमें गर्भित है ऐसा मानना है. तो क्या गर्भ की अपेक्षा वाले चारों भाव पारिणामिक भाव के भेद है?
पारिणामिक भाव का भेद में ऐसा है कि एक तो परिया सीखने का पारिणामिक है और एक द्रव्या सीखने का पारिणामिक है. पारिणामिक का दो भेद है. तो जब परियासिक का पारिणामिक कहो तो इसमें सब भेद हो आ गया. पांचवे भाव क्या कहा? एक तो शुद्ध पारिणामिक है जो ठिकाणी सामान्य शुद्ध आत्मा जो दृष्टि का विषय है वो तो निष्क्रिय है. उसमें चार भाव गर्भित नहीं है. शुद्ध पारिणामिक भाव जो दृष्टि का विषय है उसमें उदय उपशम क्षय शोकसम चार भाव गर्भित नहीं है. मगर एक बात ऐसी भी आती है कि जो उदय भाव है वो भी पारिणामिक है. पारिणामिक का अर्थ शुद्ध पारिणामिक नहीं. पारिणामिक का अर्थ निरपेक्ष अपनी पर्याय अपने से होती है. निमित से कहो तो उसका नाम औदयिक भाव है. निमित से निरपेक्ष कहो तो उसका नाम अशुद्ध पारिणामिक है. पारिणामिक का अर्थ पर की अपेक्षा न लो तो पर्यासिकने का पारिणामिक कहा जाता है. पर्यासिकने का पारिणामिक कहो तो सब उसमें गर्भित है मगर द्रव्यासिकने का पारिणामिक कहो तो चार पर्याय उसमें है नहीं.
अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का कथन आता है. इसमें अनुभूति द्रव्य रूप है या गुण रूप है या पर्याय रूप है?
वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा शब्द है. अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ऐसा शब्द है. अनुभूति स्वरूप का अर्थ ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है. अनुभूति में ज्ञान गुण की मुख्यता लेना पर्याय की मुख्यता नहीं है. और ज्ञान की मुख्यता लो तो ज्ञान गुण में अनंत गुण गर्भित आ जाता है. अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा यानी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा. ज्ञान की मुख्यता से आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है मगर ज्ञान गुण के साथ आनंद चारित्र प्रतीति अनंत गुण उसमें अविनाश भाव रह जाता है. तो ये द्रव्य सामान्य की बात है. अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भगवान आत्मा कहने तो वो सामान्य द्रव्य दृष्टि का विषय है. वो अनुभव में आ रहा है सबको यानी उसका प्रतिभा ज्ञान की स्वच्छता में वो प्रतिभा हो रहा है. क्योंकि भगवान आत्मा में गियत नाम का प्रमेत्व नाम का धर्म होने से वो अपना ज्ञान का विषय बन जाता है. अपनी ज्ञान की जो पर्याय उपयोग रूप है उसमें उसका प्रतिभा निरंतर हो रहा है. वो ज्ञायत में गियत्व है भगवान आत्मा में गियत्व नाम का धर्म है. अने ज्ञान की पर्याय में ज्ञानत्व भी है अने गियत्व भी है. तो ज्ञान की पर्याय द्रव्य को जानती है अने ज्ञान की पर्याय को जानती है मगर वहां तो विषय ज्ञान की पर्याय को जानती है. ऐसा न कहकर ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ओ मैं हूँ ऐसा कर ले बस.
पर्याय
स्वरूप भगवान आत्मा वो ज्ञेय प्रधान कथन है. अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ध्येय प्रधान कथन है. ध्यान ध्येय का होता है. अहमपना ध्येय में होता है.
ये जीव पूर्व संस्कारों से विकार करता है ये क्या पर्याय द्वेय समय की है?
पूर्व संस्कार से विकार नहीं करता है वो कभी कहीं भी आवे कि अनादि का संस्कार अज्ञानी को है, अज्ञान का इसलिए अज्ञान होता है, वो व्यवहारने का कथन है। सचमुच तो एक एक समय के पर्याय की योग्यता है, उसमें पूर्व पर्याय का अभाव होने से पूर्व पर्याय कारण नहीं है। वर्तमान पर्याय में वर्तमान अज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, मिथ्यात्व की पर्याय प्रकट होती है, उसमें पूर्व जो मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न हो गई उसका कारण से उत्तर पर्याय में मिथ्यात्व नहीं आता है, यानी पूर्व पर्याय का संस्कार उत्तर पर्याय में नहीं आता है, मगर उपचार से कहा जाता है। बाकी एक एक समय के पर्याय सत अहेतुक है, पूर्व पर्याय का कारण नहीं है, ऐसा सत है। देखो पूर्व पर्याय कारण उत्तर पर्याय कार्य कहो तो दोष आएगा कि जब सम्यक दर्शन होता है उपसम तो पूर्व पर्याय में तो मिथ्यात्व था, तो मिथ्यात्व कारण और सम्यक दर्शन कार्य ऐसा तो होता नहीं है। ये सब सारा द्रव्य की अपेक्षा से ऐसा ही आता है, पूर्व पर्याय परिणत द्रव्य कारण और उत्तर पर्याय परिणत द्रव्य कार्य, ये पदार्थ की सिद्धि के लिए है, प्रयोजन की सिद्धि उसमें नहीं होती है।
गुरु का स्वरूप क्या है?
गुरु का स्वरूप आत्मज्ञानी सो गुरु है, बस इतना ही। आत्मज्ञानी सो गुरु, बस आत्मानुभवी सो गुरु।
शुद्ध ज्ञान सिवाय आत्मा की लीनता करने से ही मोक्ष होगा, तो सिर्फ पर्याय में शुद्ध ज्ञान सिवाय भी आत्मा की लीनता करके मोक्ष जा सकती है या नहीं?
तो शुद्ध ज्ञान के पर्याय जब आत्मा में लीन होती है तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय का नाम मोक्ष मार्ग है, और बढ़ते बढ़ते शुद्ध ज्ञान के पर्याय का व्यय होकर केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम मोक्ष है। शुद्ध ज्ञान के पर्याय साधक है और मोक्ष की पर्याय साध्य होती है। स्त्री पर्याय सम्यक दर्शन प्राप्त करती है, पंचम गुण स्थान तक जाती है, मगर उसका ओभव में स्त्री पर्याय में मोक्ष होता नहीं है, इसकी योग्यता ही ऐसी है।
करना तो मरना है, जानना तो जीना है,
जीना है।
यदि ऐसी है तो प्रवचन करना क्या मरने के बराबर है?
आत्मा प्रवचन करता नहीं है, मूल बात ये है, आत्मा प्रवचन करने वाला नहीं है, भाषा करने वाला नहीं है, वो तो जानता है कि शब्द की पर्याय प्रवर्तन रूप परिणति है, मगर मैं ये शब्द की पर्याय का करता नहीं, और शब्द की पर्याय को सचमुच जानने वाला भी नहीं हूं, तो मेरे को तो जानने वाला जानने में आता है, वो शब्द की पर्याय उसमें जड़ी जाती है, बस इतना ही है मर्यादा। बाकी कोई कहे कि शब्द की पर्याय में करता हूं वो तो अज्ञान है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करने वाला सचमुच तो प्रवर्तन की जो शब्द होता उत्पन्न होता है उसका आत्मा करता तो नहीं है, मगर निमित्त भी नहीं है, आत्मा निमित्त नहीं होता है, वो इच्छा निमित्त होती है उसमें, और इच्छा से आत्मा भिन्न है।
ऐसा कहते हुए भी अगर भिन्नता अनुभव में आती है तब तो सम्यक दृष्टि ठीक है, और ऐसा कहते हुए भिन्नता अनुभव में ना आए तो कहने मात्र है,
अनुभव में ना आवे तो कहने मात्र है, अनुभव करना। और दूसरा ऐसी बात है कि किसी अन्य जीव पर लक्ष्य नहीं करना, कि ये बोलता तो है मगर आचरण जुदा है, ऐसा नहीं लेना,
बस उसका लक्षण दे दिए।
हाँ, कि जहाँ तक अनुभव न हो तहाँ तक भले भाषा सच्ची आवे, 100% सत्य हो तहाँ तक उसको ऐसा जानना चाहिए कि भाषा मेरी सत्य आगम अनुकूल आती है, मगर प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसा जानना चाहिए तो आगे बढ़ता है।
बुखार शरीर को होता है या आत्मा को या इन दोनों को?
बुखार है ना, बुखार, ओ बुखार ये उष्णता है, बुखार का अर्थ क्या? उष्णता पुद्गल में होती है, अरूपी जीव में उष्णता नहीं होती है, वो पुद्गल की पर्याय है, ताव है ना उष्णता, ये पुद्गल की पर्याय है, अरूपी जीव की पर्याय नहीं है। मगर कहा जाता है कि मेरे को ताव आया, उपचार का खत्म है सब।
आत्मा के प्रदेश एवं सुप्त पर्याय के प्रदेश भी भिन्न है। तो सुप्त पर्याय आत्मा को क्यों जाने, वह तो अपने ही पर्याय में है।
त्रिकाली द्रव्य और शुद्ध पर्याय का भी प्रदेश भिन्न है, क्योंकि जो प्रदेश भिन्न न हो, एकांत एक ही प्रदेश है सामान्य और विशेष का, तो शुद्ध पर्याय का तो एक समयवर्ती है, उसका व्यय होने से एक सत्ता में होता है, सर्वथा एक सत्ता, सर्वथा एक प्रदेश, तो शुद्ध पर्याय का व्यय होने से आत्मा का भी नाश होता है। ऐसा आया है कि जो भावना है संवर निद्रा की पर्याय, ये सर्वथा आत्मा से अभिन्न हो तो संवर निद्रा का व्यय होकर मोक्ष होता है, तो संवर निद्रा के साथ साथ आत्मा का भी नाश होता है, तो नाश तो होता नहीं, इसलिए न्याय से सिद्ध होता है कि त्रिकाली द्रव्य और पर्याय का क्षेत्र भावे भिन्न प्रदेश भी भिन्न है। सूक्ष्म बात है, उसकी टीका ही है कि जो शुद्ध पर्याय का प्रदेश भिन्न मानते हैं वो अभवी जैसा है, अपना गुरुदेव प्रत्येक टीका ही है, और कहते हैं कि गुरुदेव का मैं शिष्य हूं, शिष्य का दावा करने के बाद भी पेपर में आ गया वो बात, बहुत दुख की बात है।
आत्मा में अनंत गुण है, ऐसा आगम का वचन है, कृपया इसे युक्ति द्वारा सिद्ध करने का कष्ट करें।
देखो, एक हमारे वहां उंदाड़ा में दुधिया बनता है, आपके वहां क्या कहता है?
ठंडाई,
ठंडाई कहते हैं, समझे? तो ये ठंडाई के अंदर 1000 पदार्थ डालो और घूट कर ये ठंडाई बनाओ, और एक गिलास भर के एक घूट पियो, एक घूट पीना, एक घूट में 1000 वस्तु है कि नहीं है, बस ऐसे ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव किया तो अनंत गुण उसमें आ जाता है।
यदि आत्मा में संख्या गुण ही माने तो इसमें क्या होगा?
आत्मा में
संख्या,
संख्या नहीं, अनंत गुण है आत्मा में, असंख्य प्रदेशी है, असंख्य प्रदेशी है, अनंत गुण वाला आत्मा है, एक प्रदेशी नहीं, अनंत प्रदेशी भी नहीं, अनंत प्रदेशी तो आकाश है, आत्मा असंख्य प्रदेशी है, मगर गुण तो अंदर अनंत है, अनंत का अंत नहीं, इसका नाम अनंत, मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिया है, जिसका अंत नहीं उसका नाम अनंत। शक्ति,
शक्ति
अनंत, गुण और शक्ति एकार्थ वाचक है, समझ गया? कि गुण अनंत है, इसका अर्थ शक्तियों अनंत है, मगर गुण अनंत है ऐसा धर्म भी अनंत है। गुणा स्वभाव भवंती, स्वभाव गुणा न भवंती, गुणों को स्वभाव कहा जाता है, मगर एक अनेक नित्य अनित्य ऐसा जो अपेक्षित धर्म है वो गुण नहीं है।
सम्य दृष्टि ग्रस्त जिनेन्द्र के दर्शन पूजन आदि शुभ क्रिया करता है और शुभ भाव ये है, कृपया स्पष्ट कराने की कृपा करें।
उसको
इस क्रिया के समय इसकी ये ताकत वो किस तरह चिंतन किया करता है?
सम्यक दृष्टि को देवगुरु शास्त्र की पूजन भक्ति का भाव आता है, वो भाव आता है, वो शुभ भाव है ऐसा जानता है, और उसका काल क्रम में शुभ भाव आया है ऐसा जानता है, होने योग शुभ भाव हुआ है ऐसा जानता है, मैंने किया ऐसी कर्ता बुद्धि नहीं है, और आये बिना भी रहता नहीं है, और कर्ता भी बनता नहीं है, और उसको है बुद्धि से जानता है, यानी ये करने योग्य है ऐसा जानते मानता नहीं, जानने योग्य है आता है उसको साधक जानता है।
मिथ्या दृष्टि गौतम को चेतना के बिना सम्यक दर्शन कैसे हो गया?
वो उसकी योग्यता ऐसी थी कि जैसे अपने शास्त्र में आता है कि प्रतिमा का दर्शन भी सम्यक दर्शन में निमित्त होता है, ऐसा आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आता है। प्रतिमा भी सम्यक दर्शन में निमित्त होता है, तो प्रतिमा सम्यक दर्शन में वितराग की प्रतिमा देखकर इधर वितराग भाव प्रकट होता है। आहा हा, साम्य साम्य साम्य, वो तो किसी के सामने देखती ही नहीं है प्रतिमा, तो मैं प्रतिमा के सामने क्यों देखूं, मैं भी मेरे सामने देखूं, वहां खड़ा होकर सम्यक दर्शन हो जाता है वितरागी प्रतिमा देखकर। तो वितरागी प्रतिमा जो निमित्त होती है, तो साक्षात तीर्थंकर भगवान गंधर्व भगवान को निमित्त होवे उसे कोई आश्चर्य की बात है। हाँ देशनालब्धि, तो मगर पूर्व का घना बखत पहला ही उसने देशनालब्धि तो सुनी थी, तो ये जो आया इधर तो ग्रहित मिथ्या तो छुट गया, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा बनी और अनुभव हुआ तो अग्रहित मिथ्या तो छुट गया उसमें कोई। अरे आत्मा की ताकत सचमुच तो एक कार्य निमित्त से हुआ ही नहीं, उपादान से हुआ है, उसको वहां नजर नहीं जाती है। ऐसा निमित्त हो तो ऐसा हो, ऐसा निमित्त हो तो ऐसा हो, ऐसा निमित्त हो तो निमित्त का मात्र ज्ञान दिया कराया, क्या निमित्त से होता है ऐसा शल्य अंदर में पड़ा है। निमित्त से निरपेक्षी पर्याय उपादान में होती है अपना सटकार से,
जो
में ओ, उसका नाम निमित्त का स्थापना है, निमित्त से होता है उसका नाम निमित्त का स्थापन नहीं है। उपादान का अर्थ करता है, निमित्त का अर्थ अकर्ता है, अकर्ता को निमित्त कहा जाता है।
जो पक्ष में आता है वो क्या नियम से पक्षाधिकांत हो जाता है?
देखो पक्ष का दो अर्थ है, प्रश्न सूक्ष्म है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं रागी हूं, मैं रागी हूं, ऐसा तो व्यवहार का पक्ष अनाधिकार का था। अभी राग से पुण्य पाप से मेरा आत्मा भिन्न है और ज्ञान और आनंद से मेरा आत्मा भिन्न है, इसे जो शुद्ध आत्मा है उसका विकल्पात्मक विचार करके निर्णय करना, विकल्प की अवस्था है अनुभव के पहले, ऐसे विचार करके निर्णय करना उसका नाम शुद्ध आत्मा का पक्ष है। और इसे पक्ष के अंदर दो भेद है, इसे पक्ष का अंदर भी दो भेद है, एक ऊपर ऊपर से निर्णय आता है उसका नाम भी पक्ष कहा जाता है, मगर एक अंदर से निर्णय आता है अंदर से, उस ऐसा जो पक्ष आवे तो ये अवश्य पक्षातिक्रमण हो जाता है, अपूर्व पक्ष है। पूर्वी अनंत काल से जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ था ऐसे अपूर्व पक्ष नहीं आया था, ऐसे अपूर्व पक्ष आने के बाद सम्यक दर्शन हो जाता है। मोक्षमार्ग प्रकाश में कहा कि ये देशनालब्धि का संस्कार हो सत्का का तो ये भव में सम्यक दर्शन होवे, नहीं तो अगले भव में भी सम्यक दर्शन, उस संस्कार की बात अलग है। अने ये जो प्रश्न आया है पक्ष वाला निर्णय अपूर्व निर्णय वो बात अलग है, वो तो पक्षातिक्रांत होता है, ऐसा पक्ष आ जाता है, भले किसी को खबर पड़े या किसी को खबर न पड़े वो बात अलग है, मगर ये मैं ज्ञायक हूं मात्र शुद्धात्मा ही हूं, ऐसा कोई भी शब्द शब्द की बात नहीं भाव की बात है। जैसा आत्मा का स्वरूप सम्यक दर्शन के काल में अनुभव में आने वाला है शुद्ध नहीं का जो विषय है, ऐसा उसको पूर्व पक्ष आ जाता है। और किसी को अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन होता है और ज्यादा से ज्यादा ये भव में 6 महीने के अंदर अंदर सम्यक दर्शन हो जाता है।
वैभाविक शक्ति का कार्य क्या है?
वैभाविक तो नाम है, वो गुण का नाम वैभाविक है, वैभाविक का अर्थ विशेष भाव है, वैभाविक का अर्थ विपरीत विकार ऐसा नहीं लेना, वैभाविक गुण है उसका, जब वो आत्मा राग रूप प्रणमता है तो ये वैभाविक उसके शक्ति है, उसके विचित्र पर्याय वो पर्याय उसमें निमित्त होती है, वैभाविक गुण विभाव में निमित्त होता नहीं है।
आत्मा में जो विभाव कार्य होता है वो क्या अनुजीव गुण के कारण होता है?
अनुजीवी गुण राग में कारण नहीं होता है, अनुजीवी गुण यानी ज्ञान दर्शन चारित्र अनुजीवी गुण है, वो राग में कारण एक समय के लिए होए तो नित्य कारण कार्य बना रहे, गुण कार्य नहीं है, द्रव्य भी कारण नहीं है और निमित भी निमित कारण है, सच्चा कारण तो उसके तत्समय की उपादान की शक्ति कारण है। ये देखो एक कलश टीका लाओ, वो मुद्दा का प्रश्न है कि राग का क्या कारण है, कि त्रिकाली द्रव्य कारण है, उसका अनुजीव गुण कारण है, कि कर्म का उदय कारण है, कि कारण क्या है। वो कारण का दो प्रकार है, एक उपादान कारण है, राग का उपादान कारण है कौन, अने राग का निमित्त कारण कौन, वो दो उसका अर्थ लिया है। 175 नंबर का कलश है, कलश टीका अमृतचंद्र आचार्य का कलश, उसके ऊपर राजमल जी साहब की टीका, अने श्लोक नंबर 175 जो आया है, ये 174 प्रश्न उठा उसका उत्तर में आया है। मैं पहला 174 नंबर का प्रश्न पढ़ूं, बाद में उत्तर पढ़ दूं। कलश है, शुद्ध वस्तु स्वरूप का निरूपण किया तथापि पुनः ऐसा कहते हैं कि ग्रंथ के कर्ता श्री कुंकुंड आचार्य कैसा है, ऐसा प्रश्न रूप नम्र होकर पूछा है। कुंकुंड भगवान को शिष्य ने प्रश्न किया नम्र होकर, कैसा प्रश्न रूप, ओ स्वामी, हे प्रभु, हे भगवान, अशुद्ध चेतना रूप है राग द्वेष मोह इत्यादि असंख्यात लोक मात्र विभाव परिणाम, वे ज्ञानावरण आदि कर्म बंध के कारण है, ऐसा आपने कहा। आपने क्या कहा कि जो राग द्वेष मोह विभाव रूप है वो नया कर्म का बंध के कारण है, ऐसा आपने कहा। मैंने सुना, जाना और माना, इतनी बात आपने जो कही वो मैं स्वीकार कर लिया। कैसे है वे भाव, वो जो कर्म बंध का कारण राग आदि है, कैसे है भाव, शुद्ध चिन्ह मात्र, शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र है जो जेतु ज्योति स्वरूप जीव वस्तु उससे बाहर है, भिन्न है। अब एक प्रश्न मैं करता हूं कि उन राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणामों का कारण कौन है, जीव द्रव्य कारण है कि मोह कर्म रूप परिणाम है जो पुद्गल द्रव्य का पिंड वह कारण है। क्या प्रश्न आया, सूक्ष्म प्रश्न है, समझने जैसे है। यशपाल जी, प्रश्नकार ने इसे प्रश्न किया कि प्रभु आपने फरमाया कि नया कर्म का बंध होता है उसका कारण जीव के अंदर पराष्ठित